సర్వే విదాయత్ పదమామనంతి తపాంసి సర్వాణి చయత్ వదంతి యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ బ్రవీమ్యోమితి. हम इसी की चर्चा कर रहे थे दो दिनों से, आज तीसरी दिन है. ओम की चर्चा हम कर रहे हैं. छांदोग्य उपनिषद में एक छोटी सी कहानी आती है, कह करके हम आगे जो पिछले बार आपको छोड़ा था वहां पहुंचेंगे. कहते हैं ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, रचना करने के बाद तीनों लोगों को बनाया. तीन लोगों को बनाने के बाद सोचा कि मैं उसका एक निचोड़ निकालूं, तो उन्होंने इसको निचोड़ा तो तीन वेद को उन्होंने बनाया, ऋक यजु साम. आप कहेंगे वेद तो चार है, तो लोक भी चार होते हैं. तीन लोक हैं जो दृश्य हैं, दिखने है, दिखता है. एक जो अदृश्य है, जिसको आप डार्क एनर्जी डार्क मैटर कहते हो, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, शायद आज उसका प्रश्न नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा. तो इसी तरह वेदों में जो तीन वेद हैं, ऋक यजु साम, ये तीन लोगों का निचोड़ है. जो अथर्व है ये रहस्य वेद है. तो ईश्वर ने सोचा कि ये तीन वेद भी बड़े भारी भारी हैं, इनका भी मैं और सार निचोड़ूं. तो उन्होंने तीन वाक्य बनाया, जिसे आप गायत्री मंत्र में बोलते हो, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. फिर ईश्वर ने सोचा कि नहीं, मैं इसको भी और सार निकालूं. तो उन्होंने तीन शब्द बनाया, जिसको आप कहते हैं भूः भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र से पहले व्याहृति के रूप में बोलते हो. फिर ईश्वर ने सोचा नहीं, मैं इसको और भी सार रूप में बनाऊं. तो उन्होंने तीन अक्षर बनाया, आ ऊम, जो ओंकार है. ध्यान रखे, ये कहानी है समझाने के लिए. क्या समझाने के लिए? कि ओम में कितने सारे अर्थ समाये हुए हैं. ऐसा ईश्वर ने कुछ निचोड़ा नहीं, उसके पास कोई दही की हंडी नहीं थी क्यों निकाला. बस ये कहानी है. कहानी को जब सच समझते हैं तो शिक्षा कहीं गायब हो जाती है, जब शिक्षा को पकड़ते हैं तो कहानी एंटरटेन करती है. तो इसी से आप अंदाज लगाएंगे ओम की कितनी महिमा है, कैसे वो सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा कर रखी है. और ओम में तीन अक्षर हैं. आगे अगले स्लाइड में चलते हैं. आ ऊम तीन अक्षरों से बना ओमकार है. और वो जो ओम अपने आप में एक अक्षर है, जो हमने चर्चा की थी, पर ये अक्षर इनविजिबल है, वो किसी वर्णमाला में कहीं दिखता नहीं है. इसी तरह इस संसार की, ईश्वर की तीन अवस्थाएं हैं, मेरे जीवन की भी आपकी भी तीन ऐसे अवस्थाएं हैं जिनको हम जानते हैं. एक अवस्था जो हमें कभी हमें पता नहीं चलता. इसी तरह इस संसार की तीन अवस्थाएं हैं जो दिखती हैं, एक अवस्था दिखती नहीं है. और ईश्वर की तीन अवस्थाएं हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, चौथे को नहीं कर सकते. इसकी चर्चा हमने की थी. और ओमकार का जो पहला अक्षर है, अगला स्लाइड है, वो है अकार, जिसकी चर्चा हमने की थी. अकार से जैसे हमारे जीवन में जागृत अवस्था है, जब हम जगे हुए होते हैं, मतलब हमारे अंदर हजारों तरह के क्रियाएं एक्टिविटी चलती रहती है, मन में, शरीर में, विचारों में, बुद्धि में. इसी तरह ही संसार जब हरा भरा है, चारों तरफ सब कुछ घट रहा होता है, अर्थात ये जो बना बनाया संसार है, इसी का नाम है विराट. विराट की व्याख्या हमने की थी. विविध प्रकार से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग तरीके से, जब दुनिया के करोड़ों अरबों तरह की चीजें शोभा देते हैं, उसी को विराट कहते हैं. और इस विराट रूप का संकेत होता है आकार से. कैसे? जैसे आकार पूरे वर्णमाला में, क में, ख में, ग में, सभी अक्षरों में आकार समाया हुआ है, इसी तरह इस विशाल विराट में वो ईश्वर समाया हुआ है, वो आकार से व्यक्त होता है. इसकी चर्चा हमने की थी. आज जो हम चर्चा करेंगे वो उकार की. उकार पर आते हैं अगली स्लाइड में। वर्णमाला में उकार अ ई उ री ली पिछली बार हमने चर्चा की थी, पांच ऐसे इंडिपेंडेंट वर्ण होते हैं जिसके बीच का अक्षर होता है उ, जो ये इंडिकेट करता है जैसे उकार अपने बीच में चारों तरफ का संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है। इसी तरह वो जो ईश्वर है सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद, इसके बीच का जो समन्वय बनाता है, आदि और अंत, शुरुआत और खत्म होना, इस बीच की जो है उसको जो पालन पोषण करता है, उसका नाम उकार है। जैसे हमारे जीवन में एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं सपना अवस्था, थोड़ी बहुत चर्चा की थी। जब मैं जगा हुआ होता हूं तो मेरे इंद्रियां, मेरा मन, सब कुछ एक्टिव होता है। जब मैं सोने जाता हूं, सोने के आधा घंटा एक घंटे तक नींद में तो होता हूं, पर वो नींद गहरी नींद नहीं होती है। आवाज करो तो मैं उठ सकता हूं। जिसको अब कच्ची कच्ची नींद है उसी का नाम है स्वप्नावस्था। जिस समय इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, बॉडी काम करना बंद कर देता है, पर माइंड अभी भी एक्टिव है, मन अभी भी चंचल है, काम कर रहा है, तभी हम स्वप्न लोक में डूबे रहते हैं। हमने चर्चा की थी, अब जगे हुए भी मन जितना एक्टिव होगा, अगर शरीर, जो चीजें हम कर नहीं सकते वो हमेशा स्वप्न में देखते हैं, जो हम उसको रियल लाइफ में कर डालते हैं फिर वो सपना नहीं रहता है, वो रियल हो जाता है। सपना का मतलब क्या है? मन में आया, मन का एक्शन है। जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप मन में विचार करते हैं, मुझे घर बनाना है, ऐसे घर बनाना है, इस तरह का नक्शा करना है। जिस आर्किटेक्ट के पास जाते हैं वो जो कागज पर आपके घर का जो स्ट्रक्चर नक्शे के रूप में उतारता है, उससे पहले वो दिमाग में उतारता है। जब आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने से पहले आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर बनता है। मतलब दृश्य होने से पहले वस्तु अदृश्य में आता है। वो जो अदृश्य सत्ता है, जो वस्तु दृश्य होने से पहले आता है, उसी का नाम है स्वप्नावस्था, जिसके उदाहरण के रूप में हमने चर्चा की थी। जैसे अंडा है, अंडा सृष्टि की शुरुआत हो चुकी है, एक पक्षी की, एक जीव के पैदा होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर अब वो व्यक्त रूप में, वो दृश्य रूप में, वो विजिबल नहीं है। अंडा को तोड़ेंगे तो उसमें वो लार और पानी निकलेगा, उसमें दिखेगा नहीं, पर वो अंडे को अगर दो चार दिन रखा जाए तो उसमें से वो बच्चा निकलने लगेगा। वो अंडा क्या है? किसी सत्ता की, किसी एग्जिस्टेंस की इनविजिबल स्थिति है, जो वो सृष्टि से आगे बढ़ चुका है, प्रलय से ऊपर आ चुका है, नष्ट होने से पहले और सृष्टि के बाद के बीच की स्थिति है। जैसे बीज में पेड़ है, पेड़ दिखता नहीं है पर पेड़ अपनी सत्ता में आ चुका होता है। इसी तरह इस दुनिया का जो स्वप्न अवस्था है, जैसे मेरे जीवन में एक स्वप्न अवस्था होती है, गहरी नींद और जगी हुई अवस्था की बीच की स्थिति का नाम, इसी तरह इस संसार की जगी हुई स्थिति मतलब सृष्टि के बाद सुई सोई हुई स्थिति का नाम प्रलय। सृष्टि और प्रलय के बाद सृष्टि से पहले की जो स्थिति है उसी का नाम है स्वप्नावस्था, जिसके लिए टर्मिनोलॉजी है हिरण्यगर्भ। अगला स्लाइड चलाएंगे। इसका नाम होता है हिरण्यगर्भ। आप मंत्र पढ़ते ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सृष्टि से पहले वो था, प्रलय की स्थिति खत्म हो चुकी है, सृष्टि होनी है। असृष्टि अचानक तो नहीं हुई, जिस धरती को धरती पर हम हैं, हमारे साइंस में यह माना जाता है कि ये जब किसी आग के पिंड में विस्फोट होता है, जिसको आप बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उसमें से वो जो ज्योतिष पिंड है, वो जो टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखरा, धीरे धीरे ठंडा होकर के वो प्लैनेट्स में चेंज बदल जाते हैं। कुछ डेड प्लैनेट्स होते हैं, कुछ लाइव प्लैनेट होते हैं। पृथ्वी उस बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग के द्वारा बना हुआ एक चीज है। पर पृथ्वी बनने, पृथ्वी बना तब हम आए, हमारे आने से पहले पृथ्वी बनी, पृथ्वी आने से पहले आग के गोले बने। ये आग का गोला सृष्टि की शुरुआत है, जिसमें हम और आप दिखाई नहीं देंगे। ये पृथ्वी, पानी, हवा, आग, पवन कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वो गैस ही गैस है। इसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ, सृष्टि से पहले की स्थिति। हिरण्यगर्भ का अर्थ जानते हैं? गर्भ कहते हैं पेट में, गर्भ में जिसका हिरण्य हो, चमक हो। मां जब गर्भवती होती, जब मां संतान को धारण करती है तो वो गर्भवती कहलाती है। तो ईश्वर के अंदर जब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस ईश्वर का जो टेक्निकल नाम है वो हिरण्यगर्भ। अगला स्लाइड देखेंगे। वो जो आग के गोला विस्फोट होता है, वो जो आग का गोला पहले होता है, वो सृष्टि की प्रारंभ है। वो हिरण्यगर्भ सूक्त के कुछ हिंदी की कविता किसी ने बनाई है, मैं आपके सामने रखूंगा, आप उससे थोड़ी सृष्टि की पहले की भूमिका आप देख सकते हैं। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जगत का स्वामी महान। जो है अस्तित्ववान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किसी देवता की उपासना करे हमें हवि देकर। जो मंत्र बोलते हैं उसी का अनुवाद है। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर पृथ्वी, हरि भरि स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किसी देवता की उपासना करे हमें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगत देवों का एकमेव प्राण बन कर, ऐसे किसी देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओम सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, स्तय धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली हैं दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे है देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऋग्वेद का एक सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त, जिसकी दो चार मंत्र आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में पढ़ते हैं। ये सृष्टि की शुरुआती अवस्था का वर्णन है। सृष्टि से पहले क्या स्थिति थी, उसके लिए एक अलग सूक्त है ऋग्वेद में, जिसे हम कहते हैं नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त शुरू होता है नासदा सिन्नो सदा सिन् तदानीम नासित्र जो नो व्युमा परोयत। इसका मतलब होता है सृष्टि से पहले, प्रलय के बाद, सृष्टि की शुरुआती प्रक्रिया में ना कोई एग्जिस्टेंस था, ना कोई नॉन एग्जिस्टेंस था। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई नहीं था, बीज के अंदर पेड़ नहीं है, ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि पेड़ तो आखिर बीज से ही निकलेगा। पर पेड़ है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पेड़ को दिखा नहीं सकते। ना सत था, ना कोई एग्जिस्टेंस था, ना कोई नॉन एग्जिस्टेंस था, कुछ धुंधला धुंधला सा, कोहरा कोहरा सा था। जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, पर वो क्या था किसी को नहीं पता था। तो ऐसी सृष्टि के शुरुआती दौर से जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले वो जो एनर्जी है, एनर्जी अग्नि के रूप में, भाप के रूप में कन्वर्ट होता है गैस के रूप में, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ जगत की स्वप्नावस्था है, वो जो ईश्वर की हिरण्यगर्भ स्थिति है वो ऊकार से इंडिकेट होता है, जैसे सृष्टि और प्रलय के बीच में है, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच में है, जैसे जागृत अवस्था और सुषुप्ति के बीच में स्वप्नावस्था है, इसी तरह प्रलय और सृष्टि के बीच में ये स्वप्नावस्था हिरण्यगर्भ है, इसी को ऊकार इंडिकेट करता है। इस स्वप्नावस्था का दूसरा नाम है तैजस। तैजस मतलब तेज। दुनिया में कोई भी चीज सृष्टि होती है, पैदा होती है, पैदा होने से पहले हमें वो जो तेज, जिसको आप उष्मा, गर्मी, एनर्जी, इसकी जरूरत होती है, ये सृष्टि की पहली स्थिति है। अब अगले स्थिति पर आते हैं, मकार। अ उ म तीन अक्षरों में तीसरा अक्षर है मकार का। वर्णमाला में जैसे मकार वर्णमाला का अंतिम अक्षर है, तो मकार ये इस बात को इंडिकेट करता है कि संसार का जो प्रलय अवस्था है वो मकार से इंडिकेट होता है। उस प्रलय को करने वाला, प्रलय के अवस्था में रहने वाला इस ईश्वर मकार से संकेतित होता है, जैसे म वर्णमाला का अंतिम है। मेरे जीवन में भी एक तीसरी दशा है, जैसे ओमकार में मकार तीसरी स्थिति है, मेरे जीवन में भी मकार तीसरी अवस्था है। एक जागृत अवस्था जब मैं जगा हुआ हूं, स्वप्नावस्था जब नींद पूरी नहीं है पर जगा हुआ भी नहीं हूं, तीसरी सुषुप्ति गाढ़ नींद, ऐसी नींद दो दिन से आप थके हुए हैं, आपके घर में शादी का माहौल है, कुछ तैयारियां कर रहे हैं, वह और कोई भाग दौड़ मचा है, नया घर आप शिफ्ट कर रहे हैं, पांच दिन से सुबह से रात तक काम करते करते थक गए और आज पूरा हुआ शाम को, आज आपको थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ, खाना पीना शाम को खाते ही सो गए, बोले मुझे उठाना नहीं, नींद पूरी होने दो, और बिस्तर पर पड़ते ही पता ही नहीं चला। उस दिन रात को इतनी बारिश हुई, इतने बिजली चमके, पड़ोस में शादियां थी, इतने नगाड़े बाजा बजे, कुछ नहीं पता चला, घर में चोर भी घुसा तो भी नहीं पता चला, बच्चों ने आपस में लड़ाइयां की, बर्तने तोड़ी तो भी नहीं पता चला, बिल्कुल गाढ़ नींद। गाढ़ नींद और मौत में अंतर कम है, अंतर सिर्फ इतना है मौत के बाद दोबारा मौत की दशा में जाने के बाद वापस आ नहीं सकते, गाढ़ नींद के बाद वापस आ सकते हैं, पर दोनों में एक सिमिलरिटी है कि मौत में क्या हुआ जब मरा हुआ आदमी उसको पता नहीं चलता, तो गाढ़ नींद में रहने वाले आदमी को भी कुछ पता नहीं चलता, ना खुद के बारे में ना दूसरों के बारे में। और कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं, कभी आप देखे होंगे अपने घर में भी एक आधे ऐसे मिल जाएंगे महापुरुष व महामहिलाएं, जब वो सोती हैं और गाढ़ नींद में चली जाती हैं बिस्तर पर, तो सर अगर पहले चांद की ओर था वो सूरज की ओर मिलेगा सुबह, एक पैर अगर नॉर्थ में होगा दूसरा पैर साउथ में मिलेगा, कपड़े शरीर से कहां जाकर कहां पड़े होंगे, मुंह से पानी निकल रहा होगा, नाक इधर पड़ा होगा, ऐसे पड़े होंगे, पता नहीं है कुछ, सुषुप्ति है, गाढ़ नींद, कुछ नहीं पता उनके शरीर में कहां गया, उनका कपड़े कहां गए, वो कहां पर है, कुछ नहीं पता। तो गाढ़ नींद और मृत्यु में कम अंतर होता है, पर गाढ़ नींद से हम उठते हैं क्योंकि अभी भी आत्मा है शरीर में, इसलिए रोज मरते हैं, रोज बेहोशी में जाते हैं फिर उठ जाते हैं। पर मौत में क्योंकि आत्मा निकल जाती है तो वो बेहोशी दोबारा होश में नहीं आता है। तो जैसे मेरे जीवन में एक अवस्था होती है सुषुप्ति की, गाढ़ नींद की, बेहोशी की, जिसमें मेरा शरीर काम करना बंद कर देता है, मेरा मन, मेरी बुद्धि सब कुछ काम करना बंद कर देता है, पर मेरा अस्तित्व होता है, नहीं तो मैं मरा हुआ तो जाता। मैं मरा हुआ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व है। इसका प्रमाण क्या है गाढ़ नींद में? क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद जगूंगा। जैसे मेरे जीवन में एक दशा, एक स्टेट का नाम है सुषुप्ति, इसी तरह इस संसार की भी एक सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति में क्या होता है? को कुछ भी काम नहीं करता, पर उसकी जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, वो बनी रहती है। संसार की सुषुप्ति, अगली स्लाइड देखेंगे। का मतलब होता है जब सब कुछ अपने, आगे भी दिखाएं और आगे भी, ये है इस संसार की सुषुप्ति अवस्था। जिसका नाम है प्रलय। एक मजेदार चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमारे हिंदू कॉन्सेप्ट में प्रलय का अर्थ विनाश नहीं, प्रलय का अर्थ होता है अपने पार्टिकल्स में, अपने अणुओं में कन्वर्ट हो जाना। प्र जमा लय, इसको समझने के लिए ऐसे से हिंदी में कभी कभी आप प्रयोग करते हैं, वो पढ़ाई में डूब गया है, डूबना, इसको लय कहते हैं, लीन हो जाना। नमक को जो पानी में घोलते हैं, चीनी को जो पानी में घोलते हैं, तो नमक और चीनी क्या होता है पानी में? लीन हो जाता है, अपनी सत्ता नहीं खोती है, सिर्फ वो अपने स्थूल रूप को, अपने ग्रॉस बॉडी को शटल बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, अणु में बदल जाता है। आप चाहें वो नमक और चीनी को दोबारा पानी से अलग कर सकते हैं अगर आप प्रोसेस करेंगे तो। नमक अपना एग्जिस्टेंस, सत्ता नहीं छोड़ता, सिर्फ रूप छोड़ता है। तो नमक और पानी, नमक और चीनी पानी में लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। संसार का लय नहीं होता, प्रलय होता है। प्र मतलब अच्छी तरह, मतलब एक लंबे टाइम के लिए। लय का अर्थ विनाश नहीं, अपने ग्रॉस फॉर्म, अपना मोटा स्वरूप, स्थूल स्वरूप छोड़ देता है, अणु में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको प्रलय कहा, जिसको पर्शी में, अरबी में कयामत कहते हैं। हमारे यहां कयामत नहीं है, प्रलय है। नष्ट होना नहीं, अपने अणु में कन्वर्ट हो जाना। क्योंकि हमारे फिलॉसफी में माना जाता है जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, तो ये जो संसार प्रकृति है वो भी नित्य है, पर इसकी नित्य बदलने वाला नित्य है, इसका रूप बदलता है। ये स्थूल रूप में अनित्य है, अपने अनुरूप में नित्य है। इसको ऐसे समझें, ये थोड़ा आपको ज्यादा फिलोसॉफिकल लग गया, इसको थोड़ा हल्का करके समझें। आपको गुस्सा आया, पानी को तोड़ना है, पानी को मिटाना है, तो आप पानी को तोड़ते हैं तो पानी मिट जाता है, पर पानी का सत्ता, पानी का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। आप कहेंगे पानी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। पानी सिर्फ अपना फॉर्म बदलता है, अपना एग्जिस्टेंस नहीं बदलता। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी तोड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेंगे, उसको भी तोड़ेंगे, वो आजकल वो नया रिसर्च चल रहा है, वो हिगोन बोसन, हिग बोसन बनेगा, अगर हो सकता है आगे भी कहीं हम जाएं। आप कहेंगे मैं इस पेड़ को मिटा डालूंगा, आपने पेड़ को काट डाला, पेड़ मिटा नहीं, पेड़ की सत्ता बनी रही, पेड़ अपना फॉर्म छोड़ दिया, लकड़ी बन गया। आप लकड़ी को मिटाना चाहेंगे, आप कुर्सी चेयर बना देंगे, अभी भी उसकी सत्ता बनी है, आप उसको भी मिटाना चाहेंगे। आपने हवन कुंड में संविधाएं बनाकर जला डाला और राख बन गया। फिर आप कहेंगे ना, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, राख को भी पीसेंगे, वो अणु बनेगा और छोटा करेंगे, परमाणु बनेगा। एक स्थिति पर जाने के बाद आपका ये आप टूट नहीं रहा है, साइंस अभी भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और सूक्ष्म अणु और सूक्ष्म अणु, एक अणु के बाद टूटता नहीं है। फिर अणुओं को जोड़ते जाए जोड़ते जाए, फिर स्थूल शरीर बन जाएगा। जो अणु के रूप में कन्वर्ट हुआ पेड़, तो वो पेड़ का प्रलय था, और पेड़ के रूप में बन गया तो वो पेड़ की सृष्टि है। तो सृष्टि, ये संसार का प्रलय का अर्थ है कि वो अपने अणु में विलीन हो जाता है। जब वो होता है पर उसको जाना नहीं जा सकता, वो अणु में बदल जाता है। ये उसकी सुषुप्ति अवस्था है संसार की, सुषुप्ति गाढ़ नींद की अवस्था। जैसे गाढ़ नींद में मेरी मौत नहीं होता, इसी तरह संसार का प्रलय, संसार का मौत नहीं है। फिर समय आने पर नए सिरे से संसार बनता है, नए रूप में बनता है, फिर हिरण्यगर्भ के रूप में, फिर हिरण्यगर्भ से फिर जल स्थल जमीन आकाश सब बनते हैं, फिर और हम और आप होते हैं। इस प्रलय अवस्था को इंडिकेट करने के लिए ऋग्वेद का एक सुंदर सूक्त है, नासदीय सूक्त। अगला स्लाइड देखें, इंग्लिश है, मैं इसका मंत्र आपको बोलता हूं, आप इंग्लिश पढ़ते रहिए। ना सदासिन्नो सदासित्तदानीम् नासित् रजो नो व्योमा परोयत् किमा वरीव कुहकस्य शर्मन् नम्भ किमासीत् गहनम् गभीरम्। न उस समय कोई बींग, कोई एग्जिस्टेंस, कोई सत्ता थी, पर आप कहेंगे कोई सत्ता नहीं थी तो कोई सत्ता का अभाव होगा, बोले नहीं, कोई नॉन बींग भी नहीं था, कोई अब्सेंस भी नहीं था। ये विचित्र स्थिति, इसको समझाने के लिए मैंने अंडा और बीज का उदाहरण दिया, आप आराम से समझ सकते हैं। ना उस समय आकाश न था, ना वायु था, ना पानी था, कुछ भी नहीं था, पर कुछ धुंधला धुंधला सा था। अगला स्लाइड, ना अमृत त्युरासीदमृतम न तर्हि नरात्र्यान्न आसीत् प्रकेत अनीदवातम सधया तदेकम तस्माधान्यम न परकिंचनास। तब मौत भी नहीं था, मौत तभी होगा ना, कोई एग्जिस्टेंस, कोई अपने मूल रूप में हो। हमारे यहां मृत्यु का अर्थ होता है ग्रॉस बॉडी को शटल बॉडी में कन्वर्ट करने का नाम मृत्यु है, किसी को मिटाने का नाम नहीं, किसी को हम मिटा ही नहीं सकते। न जायते म्रियते वा कदाचित, ना कोई मरता है ना पैदा होता है। जब आप स्थूल रूप में आते हैं तो जन्म है, जब सूक्ष्म रूप में होते हैं तो मृत्यु है। ये पूरा सूक्त है, मैं पूरा सूक्त आपको सुनाकर बोर नहीं करूंगा, पर उसके हिंदी में एक कविता आपको जरूर सुनाकर समाप्त करूंगा। आज मेरे प्रवचन के बाद आपको एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम देखने को मिलेगा 10 मिनट का, जो हम पिछले से पिछले शनिवार को जो यहाँ एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम की कुछ झलकियों का वीडियो आप देखेंगे। उससे पहले प्रलय अवस्था की कुछ वर्णन ऋग्वेद के उस नासदीय सूक्त की हिंदी अनुवाद के रूप में। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था। सत समझते हैं एग्जिस्टेंस, असत नॉन एग्जिस्टेंस। अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहां, किसने ढका था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहां था। सृष्टि का कौन है कर्ता, करता है या अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता सदा अदृश्य बना रहता,
वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता।